ओम शांति। आज के क्लास का टॉपिक है कि भगवान हमारा सबसे प्रिय मेहमान है। गीत भी आपने सुना। तो भारतीय संस्कृति में मेहमानों को, यानी जो घर में आए हुए मेहमान, यानी भगवान समान समझी जाती है और उसी हिसाब से उनका मान सम्मान किया जाता है कि वो नाराज ना हो जाए, इसका ध्यान देना पड़ता है। वैसे मेहमान को अतिथि भी कहा जाता है। अतिथि देवो भव। अतिथि अर्थात जिनकी कोई तिथि तारीख नहीं आने की, क्योंकि मेहमान कभी भी आते हैं ना। तो अभी अपने यहाँ मेहमान भगवान आया है तो उसी पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे भक्ति मार्ग में ही ऐसे बताते हैं कि यदि हम शुभ कार्य कर रहे हैं या भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं और ऐसे समय में यदि मेहमान घर में आ गया तो शुभ कार्य समझा जाता है, क्योंकि एक भगवान का रूप ही समझा जाता है। चाहे भिखारी भी घर में क्यों ना आए द्वार पर उस समय, तो वो भी एक भगवान का रूप समझ कर खुले दिल से उसको दान करती है। तो इस पर मुझे एक भक्ति मार्ग की बात याद आ रही है। जैसे महाराष्ट्र में एक संत हुए नामदेव महाराज, वो वैसे विट्ठल के भक्त थे। जो उनका इष्ट देव था उसके हर समय ध्यान में मगन रहते थे। तो एक बार क्या, वो उस जो इष्ट देव थे उनको भोग लगा रहे थे। तो भोग में उनने क्या रखा, रोटी और घी का भोग लगाकर अपने ध्यान में बैठे थे। उतने में क्या होता है, कुत्ता आता है बोलते, और वो रोटी उठाकर भाग जाता। जब इन देखता है तो कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है, तो फिर वो उसको लगता है भगवान का ही रूप है बा। तो फिर वो बोलते, आप सूखी रोटी कैसे खाएंगे। तो कुत्ता भाग रहा है और वो एक घी की कटोरी रहती वो लेकर उनके पीछे दौड़ता है कि घी के साथ रोटी खाओ आप। तो ऐसी भक्ति मार्ग में मान्यता है कि जो भी शुभ कार्य करते समय कोई भी आए वो भगवान का रूप समझते हैं, इसलिए बाबा ही कहते जी। तो बाबा ही बोलते मुझे ठीक कर भीतर में कुत्ते में डाल दिया है, तो यही उसका यादगार समझो। तो अभी हम चर्चा करेंगे मेहमान, यानी कितने प्रकार के मेहमान हैं, कितने प्रकार के मेहमान हैं जो भी अपने घर में आते हैं। तो मेहमान एक ही प्रकार रहते हैं, तो कितने प्रकार है बताइए आप। ये किस प्रकार के मेहमान, कौन से कौन से? हाँ कई नजदीक, हाँ कई नजदीक होते वो, कोई दूर के रिश्तेदार, हाँ कोई बिना बुलाए मेहमान होते हैं। तो हमने ऐसे पांच प्रकार के मेहमान पर हम देख चर्चा करेंगे। वैसे मेहमान तो बहुत से, सुशील भाई ने बताया कि 21 प्रकार के मेहमान है, तो हो सकते 21 प्रकार के। तो अभी पहला मेहमान है जो डिमांड करने वाला, यानी सहयोग मांगने वाला। क्योंकि वो घर में जब आता है तो मेहमान बन के तो आता है, मगर कुछ हमें मिले ये भावना रखता है वो। यदि उसको दिया तो भी खुश होता है, नहीं भी कुछ दिया तो भी वो नाराज नहीं होता। और कभी धन की यदि जरूरत है उसको, तो किसको बोलेंगे कि भाई मेरे को धन की जरूरत है, मेरे को कुछ समय के लिए दे दो, बाद में वापस कर दूंगा। तो इस प्रकार का मेहमान है वो, यानी मांगने वाला, सहयोग मांगने वाला मेहमान। दूसरा मेहमान है सेंसिटिव मेहमान, यानी वो मेहमान कि ठीक ठाक से अपन मेहमान नवाजी नहीं किया तो फिर वो नाराज हो जाता है, कभी क्रोध भी करता है। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे ससुर के घर में जमाई जाता है तो क्योंकि उनका योग्य रीति से सत्कार नहीं किया तो फिर वो नाराज हो जाता है। तो इसलिए ससुर वाले भी बहुत ध्यान देते हैं कि वो नाराज ना हो जाए, तो इसलिए उसकी यथा योग्य सेवा करते हैं। तो इस पर एक शास्त्र की बात मुझे याद आ रही है। जैसे दुर्वास ऋषि के बारे में बताती है, सबको पता है को एकदम सेंसिटिव थे वो, यानी जल्दी क्रोध आता था उनको। जिसके घर में जाते थे, जिस भी राजा के राजमहल में जाते थे, तो यदि उसका यथा योग्य सत्कार नहीं किया, यदि कोई चीज उसने मांगी उसको नहीं दी, तो एकदम वो क्रोधित हो जाते थे और श्राप दे देते थे। इसलिए सभी लोग डरते थे, जब भी वो दुर्वास ऋषि उसके घर में आए तो पहले उसको डर लगता था कि इसका हम सत्कार कर सके क्या ना कर सके, नहीं तो श्राप तो न दे दी। तो ऐसा ही महाभारत में एक बात आती है कि जब कौरव और पांडव इनका धूत क्रीड़ा होती है, यानी उसमें ऐसी शर्त रहती है कि जो भी धूत क्रीड़ा में हारेगा उसको 13 वर्ष का वनवास होगा और 1 वर्ष, हाँ 12 वर्ष से वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, यानी उस समय उनको गुप्त रहना है। यदि उस समय किसको दिखे तो फिर 12 साल उनको वन में रहना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तो फिर वो द्रुत क्रीड़ा शुरू हो जाती है और उसमें शकुनी जो छल कपट से वो कौरव को जिताता है और पांडवों की हार हो जाती है। तो शर्त अनुसार वो उसको जंगल में जाना पड़ता है, 5 पांडव और 7 में द्रौपदी ऐसे वन में जाती है और वहां पर एक कुटिया बनाकर वो रहने लगती है। तो जब बाकी जो वन में रहने वाले ऋषिगण है वो देखते है कि पांडव यहाँ पर रहने के लिए आए, सब लोग उसको मिलने के लिए जाते थे। तो हर दिन वो चालू ही रहता था उनका मेहमानों का जाना आना। तो फिर द्रौपदी को क्या करना पड़ता, सारा दिन वो भोजन बनाकर उसको खिलाना पड़ता था, तो वो भी बेचारे परेशान हो जाती थी। तो एक दिन गावा सूर्य की ऐसी प्रार्थना कर रही थी तो सूरज ने उसको ऐसा एक वरदान दे दिया, एक बर्तन दे दिया भोजन बनाने का, कि वो बर्तन में दिया भोजन बनाएंगे, एक बार बना दिया तो फिर कितने लोग आएंगे भोजन करेंगे तो भोजन समाप्त नहीं होगा। और उसके बाद में बोला कि यदि वो बर्तन एक बार आपने धुलाई करके रख दिया तो दोबारा उसमें भोजन नहीं बनेगा, क्योंकि जब दूसरे दिन सूर्योदय होगा उसी समय उसमें भोजन बनेगा। तो ये बात चारों तरफ फैल गई थी और सभी लोग आकर के द्रौपदी के कुटिया में आते थे, भोजन करके संतुष्ट होकर चले जाते थे। तो ये बात दुर्वासी ऋषि को पता चली तो उसको क्या थोड़ी ईर्ष्या हो गई। तो फिर उसको वो देखने के लिए एक दिन अपने ऋषिगण को लेकर के वो द्रौपदी की कुटिया में जाता है, मगर ऐसे समय भी जाता है कि वो थाली धुलाई करके रखती है और जा करके जब जाता है तो पहले ये लोग डर जाते कि इस समय दुर्वास ऋषि आए तो क्या मांगते क्या नहीं। तो युधिष्ठिर जी उनका यथा योग्य सत्कार करते हैं। बाद में दुर्वास ऋषि जी बोलते कि हम स्नान करके आएंगे, तब तक आप भोजन का प्रबंध हमारा कर लो, हम और हमारे साथी है। तो फिर वो बात सुन करके एकदम ये डर जाते हैं, यानी द्रौपदी और 5 पांडव एकदम धर्म संकट में पड़ जाते हैं। अभी क्या करें, यदि भोजन तो अभी तक बन नहीं सकता उस बर्तन में, एक तो धुलाई करके रख दिया है और यदि दुर्वास ऋषि जी आएंगे तो वो तो शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि कुछ न कुछ श्रापित तो कर देंगे, श्राप दे देंगे अपन को। तो फिर द्रौपदी क्या करते, कृष्ण का स्मरण करते हैं, क्योंकि जब भी उनके संकट आता है तो उनको याद करते वो लोग। तो फिर स्मरण करते कृष्ण आ जाता है और आने के कारण वो सारी बात उनको बता देते। तो वो भी बोलते मेरे को भी भूख लगी, मेरे को भी कुछ खिलाओ। तो फिर द्रौपदी सारी हकीकत उनको बता देती और बर्तन उसके सामने दिखाती है। तो फिर वो देखता है तो उस बर्तन में छोटा सा एक अन्न का कण रहता है। तो फिर वो कण लेकर खाता है श्री कृष्ण, तो एकदम तृप्त हो जाते और डकार दे देता है वो। तो इसका अनुभव वो ऋषिगण करते उधर की, उसको ऐसी अनुभूति होती कि हम भी भोजन करके तृप्त हो गए, अभी भोजन की जरूरत नहीं है। तो फिर वो दुर्वास ऋषि जी बोलते अभी वहां पर जाएंगे अपन, तो वो लोग आग्रह करेंगे भोजन करने का, तो फिर यहां से ही चलो अपन भाग जाएंगे। तो फिर उधर से उधर चले जाते। तो ये तो कहने का भाव यही है कि ऐसी कोई सेंसिटिव यानी मेहमान घर में आती है तो वो दूसरे को प्रॉब्लम करते और खुद भी समस्या पैदा करते हैं। तो ऐसे दूसरे प्रकार का मेहमान हो गया। तीसरा मेहमान है यानी मान सम्मान से परे, उसको घर में जिनके घर में जाएगा वो यदि मान दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, क्योंकि उसको कोई ऐसी मान सम्मान की फिक्र नहीं रहती। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे कन्या है उसके घर में पिताजी जाती है तो वो उसने ये नहीं करते कि मेरा मान सम्मान कन्या वाले लोगों ने करना भी चाहिए, तो जो भी सूखी रोटी भी खिलाएंगे तो भी संतुष्ट हो जाती है। चौथे प्रकार का मेहमान है, अभी आप लोगों ने बोला कि बिन बुलाए मेहमान। तो ये क्योंकि मेहमान तो ऐसा बिन बुलाया रहता है, क्योंकि उसको तो कोई निमंत्रण देते नहीं, अपने आप आ जाते वो। तो ये बिन बुलाए मेहमान आता तो है लेकिन वो जाते समय जल्दी जाता नहीं, वो घर के लोगों को परेशान कर देता है, क्योंकि वो लोग का ये संकल्प चलता है कि यह कब जाएगा। हाँ, क्योंकि वो एक हफ्ता भी रह सकता है, 15 दिन भी रह सकता है, क्या एक मास भी रह सकता है, क्योंकि उनको अपना समय सफल करना रहता है। तो ये बिन बुलाए मेहमान, और पांचवा है निमंत्रण देकर बुलाया गया मेहमान। ये मेहमान रॉयल रहता है, क्योंकि ये ऐसा किसी घर में जाता नहीं, जब उनको अपन निमंत्रण देंगे तभी आता। तो इसमें हमारे भगवान आते, क्योंकि बाबा भी जब इस धरती पर मेहमान बन के आए हैं तो बिन बुलाए आए क्या, कैसे आए? हाँ, द्वापर युग से हम उसको निमंत्रण दे रहे कि भगवान इस धरती पर आ जाओ। तो हमारे निमंत्रण पर भी बाबा आए है, और बाबा बोलते कि मैं ड्रामा में जो नून था उसी अनुसार भी मैं आया, जो ड्रामा में पार्ट था इस धरती पर आने का वो पार्ट अनुसार भी वो भी सत्य है, और हम द्वापर युग से हम आत्मा उसको बुला रहे हैं तो उसके कारण भी वो आए, ये भी सत्य बात है। तो भगवान यानी हमारा मेहमान इस धरती पर आया है, तो हम आत्मा तो कितने भाग्य से आए। लेकिन जब भगवान इस साकार सृष्टि में आते मेहमान बन के, तो वो क्या करते, मेहमान बन के आते सबका कल्याण करता है, उसमें बहुत सारा सभी का भाग्य छिपा हुआ रहता है। तो जब भगवान आते हैं तो उस समय क्या, ये साकार सृष्टि में बहुत अथर्य वाले लोग रहते हैं, जैसे भक्ति धर्म धर्म की अथॉरिटी वाले यानी पंडित महात्माएं रहते हैं, उनके पास तो बहुत ज्ञान का भंडार रहता है, और समाज में ही उनको बहुत रिगार्ड रिस्पेक्ट देने वाले लोग रहते हैं, यानी वो अथॉरिटी वाले रहते हैं, मगर भगवान उनके पास नहीं जाते। एकांधे खूब महान पंडित है तो उनके घर में मेहमान बन के नहीं जाती है। दूसरी बात, राजकीय सत्ताधारी, ये राजकीय क्षेत्र में देखो जिनकी सत्ता है उनको कितने अथॉरिटी रहते। आज देखो भारतीय प्राइम मिनिस्टर, सारी जनता उनको कोई भी एक संकल्प भी किया तो सब फॉलो करते हैं उसको, जो भी कायदा वो पारित करते सभी वो लागू करते, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी के साथ साथ अधिकार भी रहता है। यदि किसी ने कायदे का उल्लंघन किया तो फिर वो अधिकार से भी वो अपना कायदा पारित करने की कोशिश करते हैं, जितनी अथॉरिटी रहती है उनके पास। तो हाँ, तो भगवान भी उनके पास भी नहीं गए कि राजकीय क्षेत्र में सत्ताधारी है। और तीसरी बात है साइंस वाले, साइंस के पास ही बहुत शक्ति है, क्योंकि उनने ऐसे ऐसे साधन का आविष्कार किया है, क्योंकि एक सेकंड में गर्म वायुमंडल को क्या ठंडा कर सकते हैं, और ठंडा वायुमंडल को भी सेकंड में गर्म कर सकते, ऐसे साधन है उनके पास, यानी वह शक्तिशाली है। बाबा ही उनको याद करते हैं, अभी संडे की जो गए उस संडे में जो अव्यक्त आने में बाबा ने वरदान में बताया था कि साइंस इतना शक्तिशाली है कि रेगिस्तान को भी क्या करते हैं, हरा भरा कर सकते हैं, और पहाड़ पर भी फूल उगाती है। तो इतनी अथॉरिटी उनके पास है, यानी ये जब भगवान आते हैं तब धर्म सत्ता है, राजकीय सत्ता है, और साइंस की सत्ता, ये शक्तिशाली सत्ताएं रहती है। मगर ये सत्ता होते हुए भी भगवान उनके पास नहीं जाते, उनके द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होती। तो हम साधारण जे बाबा के बच्चे रहते, उनने समाज में उतनी अथॉरिटी नहीं रहती, और कोई समाज में उतना मान सम्मान ही नहीं रहता, तो भगवान उनके पास आते। इसलिए बाबा ही बोलते, मैं गरीब निवाज हूँ और मेरे बच्चे भी गरीब है, और इस गरीब बच्चों द्वारा ही मैं क्या करता हूँ, इस विश्व का परिवर्तन करता हूँ। तो इस प्रकार बाबा हम गरीब बच्चे के पास मेहमान बन के आए हैं। तो जैसे शास्त्र में बताते हैं इनका कृष्ण है, कृष्ण को भी यानी दुर्योधन ने अपने महल में भोजन पे बुलाया था, क्योंकि वो 36 प्रकार का भोजन बनाया था उनके लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनका 36 प्रकार का भोजन स्वीकार नहीं किया। तो क्या स्वीकार किया उसने, जो गरीब विदुर था उस विदुर के घर में उसने साग और रोटी खाई। तो यही यादगार बाबा का है, क्योंकि भगवान भी धरती पर आते हैं तो गरीब बच्चों के पास ही आते हैं। तो अभी टॉप के अनुसार अपन अभी देखेंगे कि जैसे भगवान मेहमान बन के आया है, तो भगवान को भी हमें मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी ना, तभी बाबा खुश हो जाएंगे। तो जैसे लौकिक दुनिया में किसी के घर में मेहमान आती है तो क्या करते हैं, यानी 8 बातें करते हैं, क्या क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, उसको पानी पिलाएंगे, तो वो विधिवत करते, जैसे मेहमान घर में आया तो पहले उसके पौर पैर धोते हैं, बाद में उसको तिलक लगाती है, तिलक के बाद उसको गुलदस्ता देते, गुलदस्ते या फूल से उसका स्वागत करते हैं। बाद में जो घर में अच्छा आसन रहता है चेयर, जो टूटी फूटी चेयर पर नहीं बिठाते उसको, तो हाँ जो नई अच्छी चेयर रहती है सोफा वाली या सोफे की चेयर, उस पर बिठाती है। बिठाने के बाद उसको पानी जलपान करती है, चाय वगैरह पिलाती है, बाद में तुरंत भोजन नहीं बनाती तो कुछ नाश्ता वगैरह उसको खिलाती है, और बाद में उसको मनपसंद जो भोजन रहता है भोजन बनाकर उसको खिलाती है, और जब जाते समय क्या करते हैं उसको कुछ प्रेजेंट भी देते हैं, यानी हाँ दान दक्षिणा, दान दक्षिणा नहीं मगर जो घर में गिफ्ट देती है ऐसी कोई चीज देती है, हाँ तो इस प्रकार उनका सत्कार करती है। तो वो भी क्या खुश हो जाता है ना, इस प्रकार का सत्कार करेंगे तो ऐसा कौन सा मेहमान है खुश नहीं हो जाएगा, तो वो आशीर्वाद देकर चला जाता है। वैसे भगवान भी ये धरती पर आते हैं तो अपने घर में मेहमान बन के आए इस साकार सृष्टि में, तभी हमन भी भगवान की मेहमान नवाजी में आठ बातें देखेंगे कि जिससे भगवान खुश हो जाएगा और हमें वरदान से भरपूर करेगा, जिससे आधार से हमें सत्युग में ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। तो पहली बात है जिससे भगवान खुश हो जाए कि आत्मा का पाठ पक्का करना, हमारे स्वयं की पहचान, क्योंकि बाबा जब धरती पर आते हैं तो सबसे पहले बाबा क्या करते हैं, हमारा अपना परिचय देते और हमारा परिचय बताते कि आप कौन हो, आत्मा हो, और आप आत्मा का पिता, मैं परमपिता परमात्मा हूँ, यदि मुझे याद करेंगे तो आपके विकर्म भी नाश हो जाएंगे, ये आत्मा का पाठ बताते बाबा। और जब तक हमारी आत्मिक स्थिति बनेंगी नहीं तब तक हम बाबा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ेगा नहीं, और ये पाठ क्या है, फर्स्ट और लास्ट पाठ है, क्योंकि पाठ ऐसा नहीं कि अपन कहने मात्र तो कह देते कि हम आत्मा है, लेकिन आत्मा का स्वरूप बनने के लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए, तभी वह स्थिति प्राप्त होती है। और अंतिम समय में भी आत्मा का ही पाठ पक्का रहेगा तो बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ेगा और हम समस्या से मुक्त हो जाएंगे। इस पर ब्रह्मा बाबा ने भी, जब शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा में प्रवेश त्याग की तो पहला पाठ कौन सा दिया उसको, आत्मा का, आप आत्मा हो, और वो आत्मा का पाठ यानी करने के लिए, यानी आत्मस्थिति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा बाबा ने कितना प्रयत्न किया, क्योंकि उसने आत्मा हर बार स्वयं को आत्मा समझते थे और जो भी उनके संपर्क में आते थे उनको वो आत्मी स्वरूप में देखते थे, जैसे उनके परिवार वाले लोग है सबको वो आत्मा के रूप में देखते थे, और उसकी प्रैक्टिस के लिए वो दीवार पर लिखते भी थे कि मैं आत्मा हूँ, जो भी आते वो भी आत्मा, हरे का नाम लिख के आत्मा ये करते थे। इस प्रकार के उनने बहुत काल का अभ्यास किया, तब जब बाबा अव्यक्त होने के पहले उनकी वो स्थिति प्राप्त हुई थी नष्टमा स्मृति लब्धा, तो ये हमने भी आत्मस्थिति का अभ्यास किया, प्राप्त किया, तो बाबा भी खुश हो जाएंगे। दूसरी बात है यानी योगी और पवित्र बनो, क्योंकि बाबा आते ही हमें योगी भव और पवित्र भव का वरदान देती। जैसे योगी, योगी ये शब्द है यानी जो नए लोग आते हैं उनको बहुत कठिन लगता है, कल वो भट्टी हुई थी उसने वो आत्म प्रकाश भाई ने भी दो बातें बताई थी कि योगी ये शब्द यानी योग करना है या योगी बनना है तो नए लोगों को बहुत कठिन लगता है, बोलते उसको सीधा कैसा करना यानी सोपी कैसा करना, तो उसके लिए उसने दो बातें बताई थी कि जो बुद्धि रूपी नेत्र है उससे उनको देखना बोली, और पहली बात बताई, और दूसरी बोली कि मन, मन से उसको याद करना है, तो हो गया इतना यानी एकदम ये कर दिया, रायल कर दिया, आसान कर दिया। तो इस प्रकार के यदि भगवान को हम याद करेंगे तो याद कर सकते, कठिन नहीं लगेगा वो शब्द। दूसरी बात भगवान बोली पवित्रता, क्योंकि बाबा के महावाक्य है कि हम पवित्र यदि नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बन सकते, पवित्र दुनिया में जा नहीं सकते, इसलिए संन्यास दुनिया के भी लोग है पवित्रता को ब्रह्मचर्य कहती है कि ब्रह्मचर्य के रूप में लेते, तो ब्रह्मचर्य यानी है शरीर की शुद्धता होगी और उसका वो व्रत करते, लेकिन बाबा ने हमें उसकी क्या ऊंची बात बताई है कि पवित्रता यानी मन बुद्धि और संकल्प, इससे हमें पवित्र बनना है, और पवित्र बने बगैर हम पवित्र दुनिया में जा नहीं सकेंगे। तो पवित्रता यानी दुनिया वाले को बहुत कठिन लगता है कि पवित्रता उतना आसान नहीं बा अपने जीवन में धारण करना, लेकिन हमें आसान कर दिया बाबा ने, क्योंकि बाबा ने वरदान तो दे दिया हमको पवित्र बनने का, लेकिन उसके साथ साथ हम आत्मा में शक्ति भरती है, तो उस शक्ति के आधार से हम पवित्रता की अपने अंदर धारणा कर सकते थे। दूसरी बात होगी। अभी तीसरी बात है, चारों सब्जेक्ट में पास विद आनर बनना, क्योंकि बाबा ने चार सब्जेक्ट दिए हमें, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इसमें जब हम पास हुए अगर सत्युग में जा नहीं सकते, जैसे लौकिक दुनिया का ही बाबा मिसाल देती है कि लौकिक दुनिया का जो स्टूडेंट्स है उसकी पढ़ाई में जो भी सब्जेक्ट रहते सभी सब्जेक्ट उसको पास होना पड़ता है, यदि एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गया तो अगली क्लास में नहीं जा सकेंगे। वैसे बाबा ने हमें चार सब्जेक्ट दिए अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, तो इस चारों सब्जेक्ट में हमें पास विद आनर बनना है, और उसके साथ साथ वो बैलेंस भी रखना पड़ेगा। जैसे बाबा ने योग का सॉरी बाबा ने ये ज्ञान का बताया है, यदि हम किसको ज्ञान सुना रहे, ज्ञान सुनाते जा रहे सुनाते जा रहे, लेकिन खाली ज्ञान सुना से ही होता नहीं, तो उनके साथ साथ क्या चाहिए, याद का बल भी चाहिए। जब याद युक्त होकर हम किसको ज्ञान सुनाएंगे तो तीर लग जाएगा। तो दूसरी बात है योग और कर्म, क्योंकि योग करते समय अपन बाबा बोलते कि 8 घंटा याद करो, लेकिन एक जगह पर बैठ के हम तो 8 घंटा बैठ याद कर नहीं सकते, तो उसके लिए भले अमृत वेला हम बैठेंगे नुमा से हम का योग में बैठेंगे, मगर बाकी दिन तो धंधा धुरी के कार्य करना पड़ेगा। इसलिए बाबा बोलते कर्म और योग इसका बैलेंस रख के करना है हमें, तब हम कर्मयोगी बनेंगे। तीसरी बात है यानी सेवा और याद, जो भी हम सेवा करते याद युक्त सेवा करेंगे तो सेवा में सफलता मिलेंगी। यदि सेवाएं करते जाएंगे याद भी नहीं करेंगे तो फिर वो सेवा में सफलता नहीं मिलेंगी। कई लोग तो ऐसे दिन रात सेवा ही करते रहते, यदि किसी ने आज देर रात को ही उसको बोला का सेवा करो तो एकदम हड्डी सेवा करेंगे, उठ के सेवाओं के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन बाबा को याद एकदम छोड़ देते, याद ही नहीं करती। तो इस प्रकार की आत्मा यज्ञ में है ही नहीं। इसका कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने एक साइड हो गई फिर सेवा ही करते गए, और जो समस्या आई तो खाली सेवा से वो समस्या का हल नहीं कर सकते हम, उसके लिए योग का बल भी चाहिए। इसलिए याद और सेवा दोनों का बैलेंस रहेगा तो हम सेवा में उन्नति कर सकते। चौथी बात है धारणा। तो धारणा ये तीन सब्जेक्ट में यदि हम पास हो गए तो फिर धारणा तो अपने आप आ जाएंगे। जैसे जो भी हम किसको ज्ञान सुनाते हैं तो अपने में धारण करके सुनाएंगे तो वो सुनने वाले को तीर लगेगा। जैसे मम्मा के बारे में बाबा हर बार बताते कि बाबा जब ब्रह्मा बाबा मम्मा को कई बार सेवा के लिए भेजते थे तो उस सभा में ऐसे ऐसे विरोधी लोग रहते थे कि मम्मा को क्वेश्चन पूछने वाले या ये प्रोग्राम उनका होना ही नहीं चाहिए, ऐसे विघ्न रूप वाले लोग सभा में बैठे रहते थे। लेकिन जब भी मम्मा भाषण करना शुरू कर देती थी तो जो विरोधी लोग हैं उनको क्या होता था, एकदम जगदम्बा सरस्वती का साक्षात्कार हो जाता था मम्मा द्वारा, और वो भूल जाते थे क्या क्वेश्चन पूछना है करके, या विरोध भाव से आती थी तो विरोध भाव भी भूल जाते थे। इसका कारण क्या था, मम्मा जो भी ज्ञान सुनती थी तो वो ज्ञान अपने में धारण करके फिर बताती थी, इसके लिए वो तीर लग जाता था और विरोधी आत्मा भी परिवर्तित हो जाता था और बाबा का बच्चा बन जाता था। तो इस प्रकार ये चार सब्जेक्ट में यदि हम पासी दानर बनेंगे तो बाबा भी खुश हो जाएंगे। और चौथी बात है यानी पूर्वज बन करके बाबा का संदेश जन जन तक देना, क्योंकि बाबा बोलते ना पूर्वज आत्मा ही वो, तो हर एक आत्मा का बाप का संदेश दो, एक भी आत्मा ज्ञान से वंचित न रह जाए। यदि समझे हमारे कोई संबंध संपर्क में आत्मा है मगर हमने अभी तक उसको ज्ञान ही नहीं दिया तो अंतिम समय में क्या हो जाएगा, वो बोलेंगे उनका इतना बड़ा भगवान ये धरती पर आया था लेकिन आपने हमें उसका परिचय भी नहीं दिया, तो वो उल्लाना हमें दे देंगी। इसलिए बाबा बोलते हमें कोई उल्लाना न देवे, इसलिए सभी को बाप का संदेश देना है। यदि हमने संदेश दिया वो नहीं सुन रहा वो उनकी गलती, क्योंकि अंतिम समय में हमारे द्वारा इष्ट देव का उनको साक्षात्कार होगा, क्योंकि अभी वो भलाई सुनेंगे नहीं, लेकिन जब अंतिम समय आएगा तब वो बोलेंगे कि हमने मंदिर में जिनकी पूजा अर्चना करते थे ये इष्ट देव थे, यही लोग है और ये हमारे पास आए थे लेकिन हमने इनकी बात सुनी नहीं, तो वो खुद को ही दोषी ठहराएंगे, हमको दोष नहीं देंगे। इसलिए बाबा बोलते कि उल्लाने से बचने के लिए सभी को संदेश दो, वाचा मन सा सुने या न सुने उनके लगन उल्लाना तो देंगे नहीं ना, ये चौथी बात होगी। अभी पांचवी है सभी के प्रति शुभ भावना शुभ कामना। हर एक आत्मा के प्रति हमें शुभ भावना शुभ कामना रखने तभी हम उसका कल्याण कर सके। यदि किसी आत्मा के हमें अवगुण अपन में अपन देखेंगे तो हम उसका कल्याण कर नहीं सकेंगे। इसलिए हर एक आत्मा क्या करना है, हमें विशेषताएं देखने की, विशेष आत्मा है तो उसके अवगुण का क्या विशेषता में परिवर्तन हो जाएगा। और दूसरी बात, हमें उसका सहन करना पड़ेगा क्योंकि उसका कल्याण करना है तो उसके अवगुण को देखकर भी हमें सहन करना पड़ेगा, सहनशीलता से भरपूर बनने पड़ेंगे तब हम उसका कल्याण कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा का ही मिसाल कि ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में जब वो अज्ञान काल में थे तो जब समाज ने बहुत उसको मान सम्मान दिया, कितने उसके जो रिश्तेदार थे वो भी उसको मान सम्मान देते थे, लेकिन जब ज्ञान मार्ग में चलने पड़े और जब प्यूरिटी की बात आ गई तो तब उनके रिश्तेदारों ने भी बहुत विरोध किया, उसने तो उसको तकलीफ भी दी, विघ्न रूप बन गए क्योंकि उनकी ग्लानी की उन लोगों ने, उसको गाली दिया, वो ब्रह्मा बाबा को मारने का ही प्रयास किया उन लोगों ने, लेकिन बाबा ने क्या किया, सब सहन किया कि ये आत्मी भलाई अपन को अभी दुख दर्द दे रहे लेकिन एक दिन इसका भी परिवर्तन हो जाएगा। और लास्ट में उन लोगों का परिवर्तन हुआ, अभी वो लोग जो विरोध करने वाले थे वो भी अभी यज्ञ में अच्छी सेवा कर रहे, अच्छी अच्छी डिपार्टमेंट संभाल रही है। तो ये सहन सकते थे, हम सहन करेंगे तो हर एक आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। नेक्स्ट है यानी वैराग्य वृत्ति। जब हम अपने में वैराग्य वृत्ति धारण करेंगे तो बाबा भी खुश हो जाएंगे। छठवा हो गया, अभी सातवा है और क्या हो सकता है, आने जाने की प्रैक्टिस, नष्ट मोह मेहमान। सातवा है कि ड्रामा हर सीन को कल्याणकारी है, यानी उस सीन को साक्षी होके देखना है, क्योंकि ड्रामा में भी देखो कैसे कैसे सीन आती है, यानी ऐसा समय आएगा कि बहुत समस्या पैदा कर देता है, जैसा प्रकृति के पांचों तत्वों द्वारे समस्या, यानी बीमारी के रूप में, अभी कितना बड़ी बीमारी है कि लोग इतने हलचल में हो गए दुनिया वाले, ऐसी बीमारी के रूप में भी ड्रामा में ऐसा पार्ट आ सकता है। और व्यक्ति द्वारे ही कोई व्यक्ति है समझो तो हमें विघ्न रूप बन सकता है, समस्या पैदा कर सकते, तो कभी व्यक्ति का जो पार्ट दे करके हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा दुख दे रहा है। इसलिए बाबा ने बताया है कि हर एक व्यक्ति का ड्रामा में पार्ट जैसा पार्ट है वैसा भी उसको बजाना है, क्योंकि वो पार्ट को अपन चेंज नहीं कर सकते, स्वयं भगवान भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो पार्ट को क्या करना, हमें साक्षी होके देखना है। जैसे शास्त्र में रावण का बारे में बताते हैं कि रावण क्या विद्वान था, इतना उसको शक्तिशाली भी था, इतना सुखी था, वैभव भी था उसके पास, धन दौलत भी बहुत थी, एक से एक स्त्रियां भी थी उसके पास सुंदर, लेकिन इतना सब होते हुए भी उसने क्या माता सीता का हरण कर लिया। और उस पर भी सबसे पहले माता सीता ने उसको बताया कि ये ऐसा दुष्कार्य आप नहीं करो, दुष्ट कार्य, क्योंकि इससे आपका विनाश हो जाएगा, क्योंकि हमारे पति जो राम है, प्रभु रामचंद्र है, वो विष्णु की अवतार है, शक्तिशाली, उससे आपका विनाश हो जाएगा। लेकिन वो सुना नहीं, उसको लेकर लंका में चला गया। बाद में लंका में लेके जाने के बाद बीबी उसको, उस विभीषण ने भी बहुत उसको समझाया लेकिन उसकी भी बात सुनी नहीं उसने। बाद में उसकी धर्म पत्नी मंदोदरी ने भी उसको सुनाया लेकिन उसकी बात भी उसने सुनी नहीं, और लास्ट में क्या हो गया, उसका विनाश हो गया। तो अपन बोलते हैं कि इतना वो विद्वान था, सब ज्ञान था उसके अंदर, लेकिन ऐसा पार्ट क्यों बजाया उसने, तो क्योंकि वो ड्रामा में उसका जैसा पार्ट था इसलिए उसने वैसा कार्य किया। इसलिए हमें भी किसके पार्ट पर डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि वो निर्दोष है, जो भी पार्ट बजाया है, जो मिला वो बजा रहा है, इसलिए उसके भी कल्याण की सोचना है। तो हर एक सीन को हमें साक्षी होके देखना है। अभी लास्ट है आठवां, गुणों से स्वयं को श्रृंगारना है, क्योंकि हमें देवता बनना है तो गुणों से तो यहाँ पर ही श्रृंगार करना पड़ेगा, सतयुग में तो हम प्रारब्ध भोगेंगे। इसलिए जो देवताओं की महिमा में क्या गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, यानी ये उनकी महिमा है। तो हमें भी सर्वगुण सर्व सत्य क्या करनी, अपने में धारण करनी है और गुण स्वरूप बनना है, तब हम सत्युग में प्रत्यक्ष होंगे देवता के रूप में, यानी वो सब प्रलब्ध भोगेंगे सत्युग में। तो इस प्रकार ये आठ बातें यदि अपन अपने जीवन में धारण करेंगे तो बाबा भी क्या हो जाएगा, अपने घर में जो मेहमान है तो वो भी खुश हो जाएगा और हमें वरदानों से भरपूर करेगा और उसके आधार से हमें सत्युग में ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। ओम शांति।
ये सुहाए।